सहज से सहज रूप में भगवान जी, अब इससे कुछ सहज ही नहीं। हाँ, जोड़ करके प्रणाम कर दिया, कृष्ण को भक्ति हो गई, और क्या चाहिए? हाथ नहीं जोड़ सकते, मनीमन में मैं स्मरण कर लिया। थोड़ा सा देखिए, विचार कीजिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?
कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
यदि जीवन का हमारा उद्देश्य है, यही कृष्ण का प्रेम जैसे तैसे जो देता है वही गुरु, ये समझ। मान ले कि किसी ने दीक्षा हरि नाम भी दे दिया और कृष्ण प्रेम नहीं दे सका, तो फिर क्या हुआ? जिसने कृष्ण प्रेम दिया वही, ये भी हमारे प्रणम में है, हमारा बहुत कुछ कल्याण किया। किन्तु कृष्ण प्रेम जो जीवन का उद्देश्य है, समस्त शास्त्रों का सार है, जिसके द्वारा हम कृष्ण की सेवा पा सकते हैं, राधा जी की सेवा, उस प्रेम को कोई जो दे, वही हमारा सर्वोत्तम गुरु के भी स्तर है। और वो बिना कृष्ण के परिकर हुए बिना दे नहीं सकता, हम साधारण आदमी नहीं दे सकते। हम लोग एक दिशा निर्देश करते हैं, तो इस चीज को जैसे तैसे जो दोष देता है वही हमारा सर्वोत्तम गुरु। गुरु तो सभी वैष्णव मात्र ही हमारे गुरु है, वैष्णव मात्र हमारा गुरु है, जो कृष्ण का भजन करते हैं और हमसे उन्नत है, हमको कुछ न कुछ सहायता दे सकते। जो गुरु के पास ले गया वो भी गुरु है, पथ प्रदर्शक।
रामचंद्र जी हमारे गुरु,
जो प्रेरणा दिया हरिभजन करने के लिए वो भी गुरु है। जो किसी प्रकार से भगवान की कथा कभी भी हमको सुनाया हो वो सभी गुरु है। जो दीक्षा और मंत्र हरिनाम देते हैं वो भी गुरु हैं। जो दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मंत्र देते हैं, और जो साधन में प्रवेश कराते हैं उनसे भी गंभीर, और साधन में प्रवेश करा करके कृष्ण प्रेम में हमको लोभ जागृत कराते हैं और उस प्रेम को देते
हैं,
भले ही वो कुछ नहीं किए, भले ही दीक्षा नहीं दिए कोई,
और उसी में और सब गुरु गुरु क्रोडीभूत है।
यही भागवत परंपरा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन जिन को प्रेम दिया है उनको भले ही दीक्षा दिया कि नहीं दिया ये विचार नहीं है, सब लोगों ने उनको गुरु माना। रूप सनातन किसी को दीक्षा नहीं दी, किंतु जगत में ऐसा कौन नहीं है जो शुद्ध भक्त है, जो हमारे गुरु रूप सनातन ने ये गुरु, क्योंकि वो देने वाले कृष्ण प्रेम प्रदाय महावदान्य है। इसलिए गुरु का सर्वोत्तम लक्षण है जो कृष्ण का प्रेम देते हैं, हमारे जीवन का सर्वोत्तम जो लक्ष्य है उसको हमको पहुंचा देते हैं, वही हमारा गुरु। उस तरह से साधारण रूप में जो थोड़ी भी कुछ सहायता की सभी गुरु बन गए। हमारी गुरु परंपरा जो है सभी हमारे गुरुवर्ग हैं ना, किंतु उसमें से जिन्हें हमको पकड़ करके और खींच करके राधा कृष्ण के चरणों में लगा दिया महाप्रभु, वो सब मान लिया कि अभी कोई आया, हमारे गुरु जी ने दीक्षा मंत्र दिया ठीक है, और कोई ऐसे यहीं पर पहुंच जाए, रूप जी आ जाए, सनातन गोस्वामी आ जाए, या उनका कोई पर, और हाथ यहाँ पर रख करके कहे बेटा जाओ तुमको अभी कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम में रहो, तो हम कहेंगे हमारे लिए सर्वोत्तम गुरु है। इसलिए कृष्ण को गुरु बतलाया गया, महाप्रभु को गुरु बतलाया गया। नारद जी से देखे गुरु परम है, किंतु उनको गुरु बतलाया, क्योंकि उन्हीं के बातों को तो व्यास जी ने कहा है। व्यास जी हमारे गुरु किस लिए? कि व्यास जी के बात को सुखदेव गोस्वामी, हमारे गुरु जी किस लिए हैं कि इन सब की बातों को निचोड़ सार कह करके और हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति दे दें, इसलिए गुरु। जो इस विषय में सहायता नहीं करता और सब विषय में सहायता करता है वो हमारे लिए प्रणम में है ठीक है, तो गुरु सब यथार्थ गुरु वही है जो कृष्ण प्रेम। गुरु के प्रणाम मंत्र में रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है, नाम श्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? हरे कृष्ण नाम श्रेष्ठ, नाम श्रेष्ठम मनुम अपी श्रेष्ठम। श्रेष्ठ जो मंत्र है क्या? ब्रह्म गायत्री पुरुषों के लिए, उसके बाद में फिर सबके लिए गोपाल मंत्र है, कृष्ण मंत्र, काम गायत्री ये सब श्रेष्ठ मंत्र है। राधा कृष्ण संबंधी मंत्र है ये श्रेष्ठ मंत्र। तो नाम में और मंत्र में, रूप और सनातन गोस्वामी के चरणों में, स्वर्ग दामोदर के चरणों में, रूपम तस्याग्रजमपि पुरुपुरीम माथुरीम गोष्ठबाट पुरुतुरीम श्रेष्ठ पुरी कौन सी
वृंदावन
वृंदावन पुरी। इसमें हमारी जिसने रुचि लगाई राधा कृष्ण के चरणों में, जी उन्होंने राधा कृष्ण का प्रेम हमको मिलेगा ये आशा जगा दी और इस सब में हमारी रुचि और आशा लगाई, वही हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, उनके चरणों में हमें नतमस्तक। सब निर्भर करता है प्रेम में, जो प्रेम देना दिलाने वाला है उसमें मदद देने वाला है सभी हमारे, किंतु विशेष करके जो प्रेम दे रहे हैं ये यदि श्यामानंद जी नाम जानते हैं श्यामानंद, ये जी गोस्वामी के पास में शिक्षा लाती है, इनके गुरु थे हृदयानंद जी,
दुखी कृष्ण
इनका नाम था, दुखी कृष्ण किन्तु कलना में
झाड़ू मंडल
उनको राधा जी का नुपुर मिला तो किसको बतलाया पहले अच्छे वो पहले के गुरु जो हैं और ये जी गोस्वामी जी हैं, दोनों में कृष्ण प्रेम को अधिक किसने उनको दिया श्यामानंद
जी गोस्वामी बाद ने,
इसलिए जी गोस्वामी को वो अधिक श्रेष्ठ गुरु मानेंगे, यद्यपि उन्होंने दीक्षा दी उनकी भी कृपा को उपेक्षा नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे हैं, किंतु उसको श्रेष्ठ मानेंगे क्योंकि साक्षात राधा जी की सेवा दी, कहा जी मत किसी दूसरे को मत देना, कहने जिसका है उसी को देना और देंगा नहीं, कहे जैसे हम उसके चरणों में बांधेंगे इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा शब्द मत माने, ये जी गोस्वामी ने कहा अनुभवी है ना, हो सकता है कि हृदय चैतन्य न भी जानते हो, इतनी पहुंच नहीं हो, वो साधक हो, तो ये सिद्ध है। इस तरह से कृष्ण प्रेम का स्तर है, जो कृष्ण प्रेम को एकदम हृदय में भर दे वही चथा, इसलिए रूप सनातन को भी हम गुरु मानते हैं, जी गोस्वामी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, गुरु जी को, गुरु जी ने हमारे ऊपर में कृपा करके इस पथ में प्रवेश किया, इस ऋण को हम बोल नहीं सकते। इसी तरह से स्मरण करेंगे कृष्ण प्रेम जो डायरेक्ट रूप में दे रहा है उस हमारे पास ले जा रहा है उनको पकड़ करके, वो हमारा यथार्थ, हम उसके कोटि कोटि जन्मों के, किंतु अवज्ञा किसी के प्रति नीचे से ऊपर तक कहीं अवज्ञा नहीं हो, अपराध नहीं, एक हरिनाम आदमी लिया है और उससे कुछ दोष भी हो रहे हैं अपराध भी, उसकी भी निंदा मत करो, एक आदमी हरिनाम नहीं लिया दूसरा कोई है वो भी कोई दोष कर रहा है उसकी निंदा मत करो, यदि सामर्थ्य है तो उसका उसके इस चीज को दूर कर दो, चाहे प्रेम से करो चाहे शासन से करो, और यदि क्षमता नहीं है तो चुपचाप रहो दूर हट जाओ, ये सब वैष्णव के कर्तव्य है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है तुम ऐसा ही व्यवहार करना,
हमारे
घर का काम तो बंद नहीं हो जाएगा,
स्वामी मिले आपस में श्रद्धा बता रहे थे दो प्रकार की होती है, उससे आगे फिर वो कसम छूट गया था
वो आगे बढ़ी पत्ता, जैसे ये है ना ये पहले कुड़ी थी ना,
हाँ जी,
तो ऊपर का भाग दिखाई पड़ रहा है,
हाँ जी, हरा
और जब ये खिल जाएगी ना तो क्या होगा,
खुल जाएगा सर,
ये भीतर का
सारा, पहले ऐसे होती है ऐसे करके होती है फिर ऐसे,
तो पत्तों में भी दो प्रकार के, आप देरी कर दी थोड़ी सी 5 मिनट, तो यहाँ कुछ है हारमोनियम थर्मोनियम
है,
मतलब ये प्रसंग चल रहे हैं
क्या, तो ऊपर वाला
भाव संकुचित हो जाता है और ये धीरे धीरे ऐसे होना लगता है, खिल जाता है। तो नीचे जो पहले मुड़ा हुआ था वो अब वो ऊपर में,
जो छुपा हुआ था वो ऊपर आ जाता है, जो ऊपर वाला है वो नीचे चले,
नीचे चला गया। नीचे का भाव रुखड़ा होता है और ये स्निग्ध और कोमल होता है, चिकना होता है।
हाँ, तो पहले ऊपर रुखा था,
अब वैसे तो रुखा था, वो ढका हुआ था,
ढका हुआ था।
और जब ही ऐसे खिलने लगा, खिलते 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 ऐसा हो गया तो नीचे वाला हो गया ऊपर और वो पीछे चला गया।
ठीक,
अर्थात पहले चारों तरफ से रुखड़ा था, मैंने वैदिक व्यक्ति के आवरण में छिपा हुआ था और धीरे 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 वो पत्ता जब खुलने लगा तो धीरे 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 रुखड़ा भाग नीचे होता गया और होते थे ये कोमल स्निग्ध, अभी ये
चिकना
है, अब चिकना है, मैंने पहले रुखड़ा से वैदिक भक्ति से ये छिपा हुआ था और वैदिक भक्ति नीचे हट गई,
भाव भक्ति
और रागानुगा भक्ति
ऊपर,
प्रेममयी भक्ति अब ऊपर आ गई।
अच्छा,
साथी में क्या होगा, साथी साथी जो पहले जब तक रुखड़ी थी तब तक कुछ अनर्थ अपराध इसकी प्रचुरता थी, क्योंकि रुखड़ है रुखड़ी है। और ज्यों ज्यों ये प्रकाशित होने लगी, इसका मतलब वो भक्ति में जो रुखापन था, कुछ अनर्थ युक्त थी, अपराध युक्त थी, अज्ञान युक्त थी, अब वो धीरे धीरे नीचे चला गया। तो पहले जब भक्ति आरंभ किया उसमें का जो नाम है भक्ति है वो कैसी थी, समस्त दुख दूर हो गया, अनर्थ दूर हो गया, पहली स्थिति में रुखड़ी वाली में अर्थात वैदिक भक्ति में। और के दुख और शुभ माने अब ये शुभ होने लगा, भक्ति जब संचरित होगी तो उस व्यक्ति में दया, ज्ञान, तत्व विवेक, सबके प्रति प्रीति, कृपालु, द्रोहाचरण करने पर भी वो द्रोह नहीं करेगा, सबके प्रति मैत्री भाव इत्यादि, ये 26 गुण है, 26 गुण धीरे धीरे उसमें आने लगे,
ये शुभदा हो गया।
निंदा अनर्थ अपराध इत्यादि से अब वो दूर है और उसमें सब गुण प्रकाशित, उस सब में भगवान के ये सेवक हैं ऐसी भावना आ जाएगी। कृपालु उसको कहते हैं जो अहेतु की सबके प्रति कृपा रखे, कृपा जिसमें है वो तो रखेंगे दूसरों के, माने अब उसमें ये गुण संचरित होने लगे। अकृत द्रोह, उसके प्रति कोई द्रोहाचरण करता है, शत्रुता करता भी है, वो नहीं करे,
ये गुण है वो,
कोई से ऊपर उठने लगता है, पहले तो करता था टिट फॉर टैट, अब नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, जैसा जो करे हम उसके प्रति द्रोहाचरण, ये हमारे कर्मों का फल है इसलिए हमको भोग लेना चाहिए, इस तरह से सब गुण उसमें संचरित होने लगते हैं। इसके बाद में भक्ति साधन को पार करके भावावस्था में आती है, साधन तक निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक रहे, इसके बाद जहां ऊपर उठी तब उसका नाम हो गया भावावस्था, भाव भक्ति। ये भाव भक्ति है, ये बिना भगवत कृपा के नहीं होगी या भक्त कृपा के, साधन वाला हो जाएगा। गुरु जी भक्त लोग से श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपनी चेष्टा भी कर रहे हैं, बगीचे से फूल लाए या बाजार से फूल ले आकर के माला गुथा या जैसे हुआ ले करके ठाकुर जी को अर्पण किया, ये तो हाथ से किया ना, ये सभी कोई कर सकता है, किंतु अपने चित्त को भगवान में लगा देना ये अपने बस की बात। आप एक मंदिर बनवा दिया, पैसा है नहीं है, कलेक्शन करके जैसे तैसे कर दिया, ये आपके बस की बात है, किंतु मन को कंट्रोल करके कृष्ण के चित्त उसमें लगा देना, ये रुपए पैसे और संसारी किसी भी चीज की ये बात नहीं। इसलिए वो जो भक्ति है भाव भक्ति, वो भक्तों के कृपा पर और भगवान के कृपा पर, अपना चलता है बस संसारी चीजों से। बाजार में गए, अच्छे से अच्छी सब्जी ली, अच्छे से अच्छा फूल लिया, अच्छा चावल लिया, अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े लिए, सुने के आभूषण ठाकुर जी के लिए लिया, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए किया, ये सब तो प्राकृत वस्तुएं हैं, पैसे से हम ले सकते हैं। पैसा नहीं, अपने शरीर के परिश्रम से कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है दूसरों से कह सुन करके हम ये सब कर सकते हैं, इस पर हमारा कुछ अधिकार है क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य, किंतु जो भाव है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में नहीं आएगा, अनर्थ भी दूर नहीं होंगे और साथ साथ में प्रेम की तो बात ही है, प्रेम अपने वश की बात, इसलिए वो कृपा प्रसाद है, भगवत प्रसाद अथवा भक्त प्रसाद। जब होने लगी ये भक्ति, धीरे धीरे संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वासनाएं हैं ये उससे ऊपर उठी, अब भक्ति जब उठेगी कोई कृपा उठती है किसी चीज के सहारे ऊपर, उसका सहारा जितना लंबा चौड़ा ऊंचा होगा कृपा भी उसी के सहारे से ऊंचाई पर बैठेगी चलेगा। किंतु एक शर्त है, यदि कृपा जब छोटी थी छोटी सी उसके साथ से बहुत से घास उगाते हैं, भक्ति की लता जो है ये बहुत कोमल है, जैसे कि सुंदर सुंदर फूल होते हैं उनकी जो लताएं होती हैं बड़ी कोमल होती हैं, अभी तो बताने दो, अभी हरि कथा सुना जाए, ये इंद्रिय ग्राह इंद्रिय सब ले सकते हैं किंतु ये जो दे रहा हूँ वो नहीं दिया जाए। क्या बतला है
कोमल
हो आसपास उसकी घास
और दुब की घास मोथा घास बड़ा कड़ा होता है, यदि इस कोमल लता के साथ जैसे बेल किसी चीज की है अंगूर की बेल और पास के आसपास के घास को निकालना है तो बढ़ने देगी और नहीं तो नहीं बढ़ने देगी। धान का पौधा होता है, गेहूं का पौधा होता है, पौधे बड़े कोमल होते हैं और यदि उसी पौधों के साथ में काफी घासें जम जाती हैं, जो मूल लता को पानी सींचेंगे तो वो पानी वो पी करके वो बढ़ जाती है और इसको दबा देगी उसको पीला कर देगी और फिर वो मर जाएगा फिर लता। इसलिए माली का पहला कर्तव्य है क्या,
घास को निकालना,
जितने घासें हैं उनको निकाल दे। घास क्या है भक्ति के साथ में जितनी प्रकार की कामनाएं लालसाएं हैं, संसारिक हो चाहे पारलौकिक हो, मुक्ति की इच्छा तक, नारायण की भक्ति तक, तो पहले कामना बसना संसार की और कूटी और नाटी जितनी भी कुचीजें हैं, कुसंग कुचिंता और जितनी भी कु माने खराब हैं उनको मूल से उखाड़ करके फेंक दो, उसके पास में मत जमने दो। जैसे धान का या गेहूं का पौधा है या कोई लता है उसके पास में जितनी भी दूसरी घासें हैं जो बढ़ करके उसका पानी पी जाती हैं, उसको बढ़ने नहीं देते, उसको ढक लेती हैं, उसको उखाड़ करके बहुत दूर तक उसकी मूल रहेगी तो फिर आ जाएगी, इसलिए उसको मूल भी मत रहने दो, उखाड़ो अच्छी तरह से।
अर्थात संसारी कामना उपासना नहीं है, जो भक्ति के चीजों से अपने आप, जैसे आप भक्ति करने गए, भगवान की भक्ति करते करते किसी ने कह दिया ये यदि चंडी जी की उपासना करोगे, काली की, दुर्गा की, तो तुमको बहुत जल्दी से धन की प्राप्ति होगी। तो आपने किया, जैसे भगवान का तो भजन करते हैं, थोड़ा सा चंडी की भी उपासना
देखा जाए,
कुछ दिनों के बाद में चंडी की उपासना बड़ी हो जाएगी, भक्ति की लता सूख जाएगी, भगवान की भक्ति चली जाएगी और चंडी की उपासना बड़ी होकर के तुमको जहन्नम में भेजेगी। इसलिए प्रारंभ से ही ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं, दूसरे देवताओं की उपासना, भगवान के लिए अपने साधारण स्वार्थ के लिए भी भगवान से प्रार्थना, प्रभु हमारा घर बार तो ठीक रखो, तुम्हारा भजन करते हैं, ये सब जितने भी हैं और भी संसार के जितने भी कामनाएं हैं, मैं बड़ी पदवी लाभ कर लूं, हमारा स्वास्थ्य सब समय खूब ठीक रहे, मैं बूढ़ा नहीं हूं, हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हों, ये सब जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं, अब भक्ति से मत करो, प्रभु से प्रार्थना मत करो, ये तो तुमको अपने अन्यास ही तुम्हारा जैसा कर्म है ये सब मिले हुए हैं, बड़ा सुंदर चल रहा है, भूखो तो मर नहीं रहे।
अगर ऐसा कहें कि स्वास्थ्य ठीक रहे कि भक्ति कर सके,
कहने के जब तो भगवान को अंधे हैं या बहरे हैं या उनको कोई ज्ञान नहीं है, है कि नहीं ज्ञान, यदि तुमने शरणागत ही उनकी हो गई, शरण में पहुंचे तो इसकी क्या जरूरत है, जिस रूप में वो रखते हैं, जिस रूप में है वही ठीक है, तुम कुछ भी मत, बस उनकी भक्ति बढ़े, उनकी सेवा बढ़े, बस ये देखो और कुछ नहीं। तो यदि करती है तो इसकी मतलब है ये कुछ कमी, सैकड़ों इतनी मोटे मोटे लंबे लंबे लड़के
रहे,
हाँ हाँ नवदीप में जरूर देखेंगे, एक साथ में कितनी
कोमल उसको संभाले कि इतने भारी भारी
लोगों, बड़ी कोमल होती है किंतु बड़ी हो जाती है ना, ऐसी बड़ी हो जाती है 10 गाड़ी में भी उसको ला दे तो वो एक इतनी बड़ी भारी हो जाती है, बहुत दूर तक फैल जाती है, इस पूरे मकान में फैल करके होती कम लंबी लंबी सब लौकी की जड़ में, जो लौकी की बेल होती है उसकी जड़ में भी शाखाएं उड़ जाती है जड़ से ही, 10-5 ऐसी लताएं निकल जाती है, यदि उसको न छाटो तो वो बढ़ने लगेगी, वो भी बढ़ेगी, सभी एक साथ में रहेंगे और ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए उसके पास को छाट दो। जैसे हम क्लास 7 में पढ़ते थे तो सब सब्जेक्ट अंग्रेजी भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, भूगोल है, क्या क्या है, सभी कुछ है, और जब बीए में गए तो क्या हुआ,
4-5 सब्जेक्ट
सब छाट दिया ना,
हाँ जी।
आपको जिस विषय में विशेष रुचि है उसमें, एमए में बस एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं, क्यों, वो आगे ऊपर बढ़ जाएगी, आने तो उस समय में हिस्ट्री ज्योग्राफी और सब मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री और क्या क्या ये सब ज्योमेट्री ये सब रहे, गणित रहे, तो वो नहीं, एक रहना चाहिए, या तो गणित रहे, हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, जैसा रहे एक सब्जेक्ट। ऐसे भक्ति भी यदि उठती है तो उसमें बहुत सी नीचे से जड़ से कोमल कोमल लताएं उसी के जड़ से निकलती है, वो क्या है, भक्ति तो है, नारायण की भक्ति भी भक्ति है, नृसिंह जी की भक्ति भी भक्ति है,
विष्णु तत्व की करें क्या,
कोई हर्ज नहीं,
शंकर जी की,
और रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्ति ही है, दशावतार में से किसी की कुलदेव की भक्ति या किसी की भी मत्स्य की कुर्म की बराह की कर रहे हैं ये भी ठीक है, शंकर जी की उपासना दुर्गा की उपासना वो दूसरी शाखा है, उसको उखाड़ करके फेंक दो,
ये वो वाली शाखा नहीं है,
और ये शाखा उखाड़ करके फेंकने से भक्ति की लता ही उखड़ जाएगी, मत उखाड़ो, आ रहा है समझ में, इसको इसको छाट दो नीचे से, जब जब आए ना छाटो तो क्या होगा, रस एक में जाएगा, इसलिए नारायण की भक्ति कभी कुतर दो, राम की भक्ति आ रही है उसको भी निष्ठुरता से कुतर दो,
सिंह की
जितनी है बस एक रहेगी,
अच्छा,
वो क्या रहेगी, कृष्ण की भक्ति।
जब हम व्रत रखते हैं रामनवमी का,
जगन्नाथ जी को भी काट दो, लोअर क्लास तक चलेगा, सेवेंथ क्लास तक सबकी भक्ति चलेगी। अतः उस समय तक पूरी अभी एकांतिक भक्ति नहीं हुई है, और ये उसी के अंतर्गत कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत में ये सभी हैं। बैकुंठ में कहते हैं बैकुंठ की भाव को काट दो, कहां साधन की स्थिति में ही उसकी इच्छा नहीं, किंतु काटेगा कौन? वैसा सदगुरु हो तो वो कटवा लेगा। देखो इसे उसमें लाभ है। अब एकांतिक कृष्ण में भी चला, किंतु उसमें भी अभी कुछ गड़बड़ी है, कहीं द्वारका में फंस न जाओ। इसलिए द्वारका को भाई कुतर दो, कहीं मथुरा में वसुदेव देवकी के अनुसार में वात्सल्य भावना और उनके सखा जो है वो वैसे कुछ ना आ जाए। और वृंदावन में जो वो लता पहुंचती है तो उसको भी बड़ी सावधानी से रखो, एक ही चले, अधिक से अधिक उसमें दो डाले हों, तीसरी नहीं डालो, और सब उसी की पुष्टि कर। तो दो डाल क्या हुई?
तो गोपी भाव,
राधा और कृष्ण, ये डाल चलेगी। इस तरह से बाकी सबको छांट दो, तब तो वो भक्ति लता वृंदावन में पहुंच करके राधा कृष्ण के चरणों में पहुंच करके प्रेम का फल देगी। और नहीं तो यदि इधर उधर गई द्वारका, वहां नारायण लोक में भी गई और ब्रज में भी आने की चेष्टा कर रही है, तो बीच में वो रह जाएगी और बैकुंठ में ही लपटा जाएगी। इस तरह से भक्ति को शुद्ध और एकांतिक बनाना चाहिए। ये उपशाखा को भी एक को उखाड़ना है और दूसरी को
छांटना है।
एक दो की शाखा नहीं है, लाखों लाखों शाखा, ये संसार में रहते हुए ही लाखों है, और यदि उससे ऊपर बैकुंठ तक गई तो भी अभी हजारों है, उन सब हजारों को छांटना है।
ये महाराज फूल का जो कंपटीशन होता है, तो माली क्या करता है, सारी कलियों को छांटते जाते हैं, एक ही खाली कली
एक रखता है, वो बड़ा होता है, यही नियम है,
वो बड़ा होता है,
जिसको पुष्ट करना है बस उसको रखना है, सब फूलों को कलियों को हटाते जाओ,
पेड़ नहीं उखाड़ना, बस वो कली उखाड़ती
है, डेलिया का
माने इसका मतलब है रस जो है उसमें आए और ये पुष्ट हो। तो हमारा भी जो भक्ति का साधन का जो रस है, बस एक लता में आए, किस लता में? ब्रज के गोपी भाव में आए, या जिसमें उसको है, बस एक में। गुरु भी ऐसा होना चाहिए, माली
जैसे ही काटे
ऐसा ही, अपने खुद माली बनना पड़ता है। जिन्हें गुरु की सेवा की है, उनकी कथाएं सुनी है, धीरे 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 इस पर चलेगा,
एक स्तर पे आके खुद माली बन जाए,
सब पर प्रीति रहेगी। मान लिया हमने, कह दिया ये सब पर प्रीति रहेगी, किंतु सब पर प्रीति रहेगी
नहीं रह सकती,
जो मात्र पर प्रीति साधारण रूप में रहेगी, किंतु जो कृष्ण का नाम करता है उस पर अधिक हो जाएगी। राम का नाम करता है, ये भी भक्ति करता है, ठीक है, किंतु उससे उस पर अधिक आ जाएंगे, वो अपने आप वो हट जाएगा। कृष्ण में भी जो राधे 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 कहता है, वो सुन करके हृदय और प्रफुल्लित होता है। वो वैसा गलती उसमें नहीं होती, वैसा माली नहीं है, वैसा माली नहीं है।
तो महाराज फिर रामनवमी का व्रत रखते हैं, तो वो तो भी भगवान राम के लिए रखते हैं।
कृष्ण की भक्ति पुष्ट हो रामचंद्र जी की कृपा करें, क्योंकि भगवत अवतार है, कृष्ण ही राम बने हैं।
हाँ जी, हाँ जी, तो
इस रूप में लो,
ठीक है,
कृष्ण ने ही राम के रूप में कैसी करुणामयी लीलाएं दिखलाई थी, दिखलाई, इस रूप में ले रहे। चंद्र की जो जो विविध ये प्रतीतियां होती हैं,
16
चंद्र एक ही है, दो नहीं, इसलिए पूर्णिमा का चांद भी वही है जो द्वितीया का चांद, तृतीया का चांद,
देखने में असर नजर आता,
किंतु एक ही में भी विशेषताएं दिखती, किंतु पूर्ण जब कहेंगे तब पूर्णिमा का ही है, किंतु हम द्वितीया से तृतीया से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, ये तब नहीं चलेगा, एक ही का।
कई लोग कहते हैं ना दूज का, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, उससे बहुत कुछ होता है, कुछ चांद दूज का नहीं देखना चाहिए,
चौथ का
नहीं देखना चाहिए, उससे कुछ विपत्ति आती है अपने ऊपर, हमने सुना हुआ है,
वो संसार वालों के भक्ति वालों का नहीं,
कुछ सुना हुआ है इस तरह से कि चौथ का चांद देखने से विपत्ति आती है, कुछ
पूर्णिमा के समय चौथ ना, ये अमावस्या पहले चौथ,
पता नहीं सुना हुआ, इतना ही सुना हुआ।
कोई भी चौथ को साथ
जब चंद्रमा होता है, जब सामने चौथ का चंद्रमा,
ये सब मेटेरियल, उससे कोई भक्ति का लेना देना
नहीं। चंद्र चांद की कलाओं से
जैसे कामनाओं को, ये इनको संसारिक और इनको इनकी सेवा में लगाना चाहिए, बिल्कुल निर्मूलता से इनको हटा देना चाहिए।
जैसे आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, भजन कर रहे हैं, तो आपको धन के लिए दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, अब इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाएंगे?
इसको
उखाड़ो, एकदम उखाड़ दो।
ये तो पक्का है कि राधा कृष्ण की करनी है, बट संसारिक कामनाएं होती हैं जो जैसे जो अभी खत्म नहीं हुई है, जैसे
तो इसका मतलब है अभी अनर्थ है, अभी शुद्ध भक्ति नहीं।
वो अपने आप ही भक्ति करते करते खत्म होनी
है। भक्ति आप करते करते भक्ति प्रवेश जितनी होगी साधु संघ के बल से, हमें बल आएगा वो धीरे धीरे, और कोई दूसरा
तो अपने बस में तो नहीं है कि हम दूर कर सकते, हमारे बस में
अपने आप बहुत बलवान होती है।
और जैसे आपने बोला कि भक्ति की पहली स्थिति में मतलब क्लेश दूर करने वाली है
वो शुद्ध भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान
करना पहली स्टेज
है। ये ऐसे हो
ये हमारी
चेष्टा, तो अभी दुर्बलताएं होती हैं, अनर्थ होता है, अपराध भी हो जाता है, किंतु हम राधा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त, भजन के अतिरिक्त किसी दूसरे का नहीं करेंगे।
इतना तो हम कर, इतना तो
ऐसा भाव है,
इतना तो भाव हमारे हम कर करते हैं,
हम दूसरे देवता का
नहीं करेंगे,
हम उनको आदर करेंगे, किंतु हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण, यह जानकर के अन्नाभिलाषिता को अभिलाषिता रहेंगी, किंतु दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अभी है संसारिक ममता भी है, अभी संसारिक विषय में आसक्ति भी है, तो भी कर रहे हैं। इसलिए पहले में कनिष्ठ अधिकार, फिर मध्यम अधिकार, तब उत्तम अधिकार आता है, किंतु पहले से ही यदि दूसरे देवताओं की उपासना और ये सब करते हैं और सब समय दूसरी लालसा है, तब
तो कम नहीं होगा, तब ठीक है,
तब साधन ही नहीं,
तब साधन ही नहीं।
भाव को लक्ष्य करके जो हमारे हृदय में भाव की उत्पन्न हो, भाव भक्ति, तब जो साधन करते हैं तो वो साधन है, नहीं तो साधन भक्ति नहीं।
तुम्हारे लिए एक और जैसे पूछना, जैसे हमें संसार में कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कोई हमें बुलाता है, कहीं पे जागरण है जाना है, या कहीं पे ऐसा कीर्तन हो रहा है जहाँ पे सबकी जय बोलते हैं और जागरण के, तो वहाँ का प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
ले सकती है,
जागरण का ले सकते
हैं, तुम्हारा चित्त दुर्बल है तो ले लेना।
हम तो नहीं लेना मैं तो नहीं,
आपत्ति नहीं, तुमको यदि उसकी भी जरूरत है वो ले लेना,
मतलब
और यदि ये सोचते हैं कृष्ण की भक्ति की जरूरत है हमको और की जरूरत नहीं,
हम लेते नहीं है प्रसाद, मैं नहीं लेते,
लेना कोई हर्ज नहीं है यदि
नहीं, पर नहीं लेना ठीक नहीं है ना, ये मैं
उसके उसके अधिकार पर वो रहता है, हम तो कह देंगे आप तो मानेगी नहीं,
नहीं नहीं जा, मतलब अगर नहीं लेना तो नहीं लेना, ये तो फिर आप बताएंगे, तो
अभी तो संदेह है,
संदेह नहीं है, मैं तो पूछ रही हूँ उसके बारे में, संदेह नहीं है महाराज, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि लेना चाहिए कि नहीं, कई बार कुछ दे देता ना, उसकी बात कर रही
हूँ, तो देंगे ही,
मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें लेना चाहिए, लेकर भी हम नहीं खाएं, मतलब ले लें उनसे हाथ से,
अभी भी गड़बड़ी है,
लेना ही नहीं चाहिए तो वो फिर जो दूसरा
अभी गड़बड़ी है, अभी इसीलिए ये कनिष्ठ अधिकार है, अभी चित्त दुर्बल होता है, तुम नहीं सब पूरा कर सकते।
महाराज हम तो उठ के ही आ गए थे, हमने प्रसाद लिया ही नहीं, जैसे प्रसाद देने लगे ना
तुम गई ही
तो,
क्यों
तुम्हारे वो तो फिर जैसे आस पड़ोस वाले हैं उनको, तो आपने कहा सम्मान तो देना, तो सम्मान
इसीलिए
तो
अभी उस अधिकार में अभी रह करके उनका कुछ मन रखना,
मन रखने के पड़ लिए
रखना पड़ता है, और हम लोगों को मन रखना है किसी का, हम तो मन रखने की बात नहीं करते हैं,
उनके घर में
मेरे नजदीक एक रिश्तेदार में उन्होंने जगराता कराया, तो आप आ ही जाओगे, मैंने क्यों हम बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं, और मैंने कहा राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हो क्या, बोलते नहीं, मैंने कहा फिर तुम मुझे बुलाने का साहस कैसे कर रहे हो, चुप, बहुत नजदीकी रिश्तेदार है।
अभी आप लोगों को पास पड़ोस दूसरे सबका भी अभी कुछ बन रखना है, क्यों
रखना, वहाँ
रखना, क्योंकि ऐसी परिवेश अभी चारों तरफ का एनवायरमेंट अभी अभी आपका नहीं पूरा,
तो
ऐसा बना लिया ना जो हमको भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हम किसी की परवाह, भगवान का भरोसा हो जाता
है, वो तो व्यवहारिक उसमें आ जाता है ना, अगर हम किसी के जाते हैं,
किंतु उसका मन रखना होता है,
मन रखना होता है, क्योंकि
तुम कृष्ण का मन रखने आई है कि भगवान उनका, अभी इसीलिए तुम्हारा अभी चित्त दुर्बल है, इन लोगों का मन रखना, और हम लोगों का ये नहीं, किसी का मन तब किसी किसी का रखना पड़ता है।
हम तो
किसका रखना पड़ता है, भक्ति में जो आए हैं और निम्न अधिकार के हैं या कुछ, उनका कुछ मन रखना, और हमसे ऊपर उठ, हम जब और ऊपर उठ जाएंगे
उनका भी नहीं रखेंगे,
उनका
भी उनका रखेंगे क्या, उनको तो झन बदल अपने साथ ही लगा लेंगे।
सब अधिकार अब आप कीर्तन कीजिए, अधिक मत बुलाइए नहीं तो मेरे लिए। हमको 45 मिनट से 20 40 मिनट से अधिक मत बुलाना। आधा घंटा बोला, जब से आए तब से 10 बजे से बक बक कर रहे हैं।
भारत को डेढ़ घंटा हो गया,
डेढ़ घंटा हो गया ना, ये कठिन बात है। 10:30
बजे
ब्रेक वाला हुआ
है, कल बोले थे महाराज जी 40 मिनट, तो नवीन प्रभु ने बोला कितना, बोले बोलते 10 मिनट बोला,
तो है हमारी अभिलाषा। इष्ट माने क्या, इष्ट संस्कृत शब्द है, हम जो चाहते हैं उसको कहते हैं इष्ट। हम किसको चाहते हैं, क्या चीज चाहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, शांति हमको चाहिए, ये कैसे होगी, भक्ति से। किसकी भक्ति से, राधा कृष्ण की भक्ति से। ये राधा कृष्ण क्या हैं, विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाले, पालन करने वाले, पोषण करने वाले, इस जगत से कोटि कोटि गुणा बड़ा चित जगत है, जहां पर जन्म मरण ये सब कुछ नहीं है, प्रेम की नदी बहती है, समुद्र लहराता है, उसका एक बिंदु भी हमको मिल जाए तो हमारे जीवन धन्याति धन्य हो जाए, जन्म मरण से भी अतीत हो जाएंगे, कोई दुख भी नहीं रहेगा उनकी सेवा में, किनकी, राधा कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण की जो भक्ति है, भक्ति तो है किंतु किसकी, राधा कृष्ण, इसलिए राधा कृष्ण हमारे इष्ट देव हो। अभी तुम नौकरी करके वाणिज्य व्यवसाय से रुपया पैदा करेगा, तुम्हारा इष्ट देव हुआ पैसा, समझ रहा, अच्छा वो पैसा जो देता है वो तुम्हारा इष्ट देवता है, तुमको चाहिए मुक्ति, तो मुक्ति तुम्हारी इष्ट हुई, मुक्ति को देने वाला जो है इष्ट देव हुआ। भक्ति हमारे लिए इष्ट है, भक्ति, इस भक्ति को देने वाले भगवान या भक्त हैं, तो भगवान हमारे इष्ट देव होंगे। यदि तुम वैभविक युक्त भक्ति, ऐश्वर्यमय भक्ति चाहते हो नारायण की, तो नारायण देव लक्ष्मी नारायण तुम्हारे इष्ट हैं। यदि तुमको ब्रज का प्रेम पाना है तो उसके लिए राधा कृष्ण तुम्हारे इष्ट होंगे। इसलिए हमारे सब शास्त्रों में सबसे जो श्रेष्ठ हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश सदा, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो राधा जी के साथ में, वही हमारे इष्ट देव, वो हमारी सारी कामनाओं को जो नीचे से ऊपर तक, ऐसी कोई कामना नहीं जो अर्थ की लालसा को, मुक्ति को भी, वैकुंठ की और सबसे ऊपर की, सबको ये पूरी कर सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए राधा कृष्ण ही सर्वोत्तम इष्ट देव है। आया समझ में, अभी संसार के लोगों का इष्ट रुपया है, इसलिए उनके लिए अभी इष्ट देव वही है, कैसे वो मिलेगा उसके लिए साधन करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय इधर उधर, और हम लोगों के लिए राधा कृष्ण ही इष्ट देव। संसार भी करो किंतु राधा कृष्ण को इष्ट बना करके, उनका नाम इष्ट देव है, करते 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 हम चलिए
बोलो जल्दी।
महाराज ये इष्ट देव इसके अगर पैसा है तो ये अपने इष्ट देव को कैसे बदलेगा, इसको बता दो।
तब वो गणेश की पूजा करेंगे, अर्थ को देने वाले गणेश है, दुर्गा जी है, काली है, ये देंगे, किंतु उसके लिए गारंटी नहीं देंगे, जैसे इसके साथ साथ में दुख होगा, अपने दुख होगा, अर्थ देंगे किंतु ये गारंटी नहीं लेंगे ये इसको सुखी होगा, उस अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है, अर्थ के लिए लोग काट देते हैं, है ना, इसलिए दुर्गा जी ये गारंटी नहीं लेंगे, बोलेंगे कि हाँ तुम अर्थ लोगों से अर्थ दे, और कृष्ण में है वो तुम्हारा कभी अनिष्ट ही नहीं होने देंगे, ऐसी प्रेम चीज देंगे जो तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी, तुम जीवन भर सुखी और शांति रह सको,
ये दुर्गा नहीं देख सकती, शंकर जी नहीं दे सकते, यहाँ तक कि नारायण नहीं दे सकते हैं, राम नहीं दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, ये कौन देगा? ये राधा कृष्ण दे सकते हैं, इसलिए सर्वोत्तम इष्ट देव राधा कृष्ण।
पांडव लोग जो थे तो लोग कृष्ण की भजना करते थे, तो उनका पैसा कमी थी क्या? धन तो कोई थे नहीं उस समय।
हाँ तो ठीक, वो तो पैसा नहीं चाहते थे, पैसा उनके पीछे चलता।
पूछने लगे, घर को क्या छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ करके चले आए, अरे रहने ना तो भाई क्या चल रही है,
क्यों चला है, घर को छोड़ करके माता पिता से बात छोड़ करके। हमने कहा जी आप लोग तो पढ़े लिखे हैं और बड़े बुद्धिमान लगते हैं, अच्छा सच सच बताओ तुम्हारी शादी हो गई है? तो हाँ हो गई। तो मैया को साथ लेकर के रहता है अपने घर में ना कि मैया दूसरी जगह, तुम अपनी विवाहिता पत्नी को लेकर के दूसरे घर में है? तुम एकदम सच सच एकदम प्रतिज्ञा करके बतलाओ, शपथ लेकर। तो मैया दूसरी जगह रहती, हम अपनी पत्नी के साथ। तो मैया की क्या सेवा करता है? रुपया कमाता है तो मैया को कितना देता है? अच्छा रोटी और कपड़ा देते हैं, और क्या देता है? अच्छा कुछ नहीं। बहुत से लोग अजय माता पिता के द्रोही बन जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं? मैं मैया से दूर रह करके भी मैया की वह सेवा करता हूँ और करूंगा जो तुम लाखों लड़के मिलकर के अपनी मैया की सेवा नहीं कर। माता पिता की वो सेवा करूंगा जो जन्म मरण से उनको ऊपर उठा ले जाऊंगा, भगवान के चरणों में देकर के उसको नित्य शांति और सुख दे दूंगा। संसार के लड़के क्या करेंगे, 10-20 रुपए दे दिए, कपड़ा दे दिया, एक धोती दे, और बहुत से लड़के हैं वो भी नहीं देंगे, मैया का दुहेंगे, मैया को भुजाली और गम दिखलाएंगे, जिससे अपने पैसे सब दे दो नहीं तो तुमको सूट कर। तो यही सेवा है। एक आदमी कलकत्ते में नौकरी कर रहा है और मैया बहुत दूर है, इंग्लैंड में जा रहा है, और वहां से सारी व्यवस्था यदि माता पिता करने के लिए करता है तो वो सेवा अधिक है ना, उसके पास में रह करके मैया का केवल दूता है, कौन सेवा करता है? उत्तर नहीं दे सके। हमने कहा मैया की वो सेवा करूंगा या कर रहा हूं जो तुम लाखों जन्म में, एक जन्म क्या लाखों जन्म में तुम लोग नहीं कर सकते। उदाहरण के साथ में बतलाया तो वो सब निरुत्तर हो गए। तो वैसे ही यद्यपि आपको खाना पीना के लिए ये सब कुछ कर, अभी तो आप ही खिला रही हैं सब।
मैंने क्या खिलाना वाला जी?
किंतु वो आपको ऐसा भगवान की भक्ति में ले जाएगा जो भगवान उसके संबंध से आपके ऊपर निकलता है। मरने के बाद भी आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा, उसके यदि साधारण भी वक्त होगा तो सात पुरुष उद्धार हो जाएगा उसका। साधारण आदमी जगत के पुत्र नहीं कर सकते, और बूढ़ी हो जाएंगी, खांसेंगे का जी घर से चली जाए, खांस रही है, हमारे बच्चे को नींद नहीं आ रही। इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि उस पर रखेंगी, आशीर्वाद देंगे जी, तुम जहां भी रहो सुखी रहो, और आपकी जैसी मैया को छोड़ने का शास्त्र में विधान नहीं, आप तो भगवान का भक्त हैं आप लोग, इसलिए आपको छोड़कर के कौन कहां जाए। नास्तिक यदि माता पिता रहे तो उनको छोड़ने का कोई विधान नहीं, भक्त मैया को। यदि पत्नी धार्मिक है तो उसका छोड़ने का विधान है, दोनों मिलकर के भजन करें। यदि पत्नी भगवान के भजन में बाधा देती है तो उसको छोड़, पति भगवान के भजन में बाधा देता है तो उसको छोड़ सकते हैं, माता यदि भगवान के भजन में बाधा है तब तो उसको छोड़, नहीं तो नहीं मत छोड़, पाप लगेगा। बोलो पढ़ो, अभी पढ़ा नहीं,
बस थोड़ी सी बीच में रह गया था ना,
जल्दी करो।
जब पहुंचे मरुभूमि गुरु जी ऑस्ट्रेलिया, वो कल बता रहे थे ना कि डेजर्ट है, देखी धूल काम क्रोध लोभ मोह की, दिल हो गए थे रूखे भक्ति रस से। लोग बदल रहे हैं, गाँव चल रहे हैं, या अपने मतवाला होने का बताने के लिए कहा है। खैर महाराज जी अब हमारी सुनिए, उन्हें तो संभाला हमें न तजिए।
Why Krishna used all things? Flower, Varaha Pidam, Natavar Bapu, Karna Yoga, Karnikar. Karnikar means yellow, that's flower. Mati Radhika, it indicates that I am keeping Mati Radhika on my head. Its meaning is like that. Every. Sometimes Krishna, this place is like reddish like this. So Srimati Radhika wearing the cloths or keeping something belts like reddish. In the color of this. It means I'm keeping the very soft and sweet, weights of Srimati Radhika, Krishna. Everything. Without meaning, nothing is there. Everything depends on mood. Clothes, color, anything. उसके बीज जो होते हैं राता जी के दांतों के समान होते हैं। उसको देख करके कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ये राधिका जी के दांत हैं। जहां जहां सिमिलरिटी होगी उसको वो प्रसन्न करते हैं, उसको धारण करते हैं। खाने की कोई चीज नहीं, बच्चा भी नहीं जानता है इसका मूल्य क्या है। ये हाथ में इधर देखता है कि बचता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब उसको छोड़ देगा। किंतु जौहरी उसको जब देखेगा तो उसका मूल्य समझेगा। एक गुरु और शिष्य थे, गुरु जी सिद्ध थे। एक दिन कहीं चले गए, आश्रम में केवल शिष्य रह गया। किसी को सांप काट लिया गांव वाले को, बच्चा करीब करीब मरने वाला था। गांव वाले उस बच्चे को लेकर के आए, जी गुरु जी सांप काफी मन से जानते हैं, बच्चा मरने पर भी उसको जीवित कर देंगे। तो आए तो देखा तो पूछा जी गुरु जी कहाँ है, तो गुरु जी तो बाहर चले गए। अरे बच्चे को सांप काट लिया है हमारे, अभी थोड़ी देर में ही मरने वाला ही है, एक तरह से मरी गया है, कहीं मन मुख से निकल गया, शरीर काला हो। अरे मैं तो कुछ जानता नहीं, तो तुम्हारे गुरु जी ये सब जानते हैं, तुम नहीं जानता है, ऐसा नहीं है, तुम जैसे तैसे कुछ करो। तो जब बार बार दबाव डालने लगे तो उन्होंने देखा कि मैं क्या करूं, मैं तो जानता नहीं मंत्र ना कुछ। किंतु गुरु जी कहते हैं सब रोगों की दवा अचूक दवा कृष्णा में। उन्होंने स्लेट पेंसिल से लेकर स्लेट पर लिखा कृष्ण कृष्ण, कहा जी इसको धो करके तीन बार पिलाओ। उनको ऐसा विश्वास था, बस कृष्ण लिखा और उसको धोया पिला दिया, फिर लिखा फिर धोया पिला दिया, फिर धोया पिला दिया, और सतुच में बच्चे का विष दूर हो गया और एकदम करके बैठ गया। हर शुद्ध गुरु का सिद्ध ही चेला होता है। बच्चा भी प्रसन्न हुआ जी, हमारे गुरु जी कहते हैं ठीक कहते हैं, समस्त रोगों की दवा अचूक दवा। बच्चे को लेकर के चले गए, दो तीन दिन के बाद में उसके गुरु जी जब लौटे तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सब लोग जाकर गुरु जी के पास में बच्चे को ले गए, उनके चरणों में बच्चे को डाल दिया। अरे आप लोग बड़े आज प्रसन्न हो रहे हैं, क्या बात है? तो हमारा बच्चा मर गया था, सांप काट दिया था, किंतु आपके चेले ने इसको बचा दिया, इसलिए यह संवाद देने के लिए हम लोग आए थे। ये आपका चेला भी, आपका शिष्य भी आप ही की तरह हमें सीखता है। उन्होंने सबके सामने उसको बुलाया, हमने क्या मंत्र किया और कैसे वो ठीक हो गया? तो गुरु जी मैं तो सुना था जे सब रोगों की अचूक दवा कृष्ण नाम है, और ये हमसे जीत करने लगे तो मैं और क्या करूँ। तो मैं कहा जैसे कृष्ण नाम लिख करके इसे तीन बार पिलाया। तीन बार तुमने कहा? हाँ गुरु जी, हमारे आश्रम से निकल गया, हमें निकल बदमाश कहीं का निकल जा, निकाल देने लगे। और वो रोने लग गया, और जितने देखने वाले थे अब उनकी हंसी भी अब बदल गई। अच्छा गुरु जी इस बच्चे को बचा दिया गया और गुरु जी उस चेले को निकाल रहे हैं? कह नहीं नहीं नहीं, अब तुमको देखना नहीं चाहता, तुम जल्दी से जाओ। उन्होंने कहा गुरु जी इसको क्षमा कीजिए, क्या दोष हुआ हम लोग समझ नहीं गए, हमारे बच्चे को बचा दिया तो भी आप इसको बाहर कर रहे हैं। कहा जिसे इसको भगवान के नाम पर विश्वास में तीन बार क्यों कहा? एक बार में तो काम हो जाता, तीन बार क्यों कहा विश्वास में? सब लोगों के बार बार विनय करने पर कहा जी अच्छा ठीक है तुमको रख लेता हूँ, किंतु आइंदे से याद रखना। देख हमारे पास में एक छोटा सा पत्थर है, जाओ बाजार में इसका मूल्य पूछना, इसका क्या मूल्य है, बेचना मत। इसका कोई मूल्य लगे तो हमारे पास में बतला देना, इसका इतना रुपया या इतना पैसा या ये कुछ मूल्य लग रहा है, तुम चला हमसे पूछ करके बेचना, ऐसे मत बेचना। वो तो पत्थर का टुकड़ा ले गया, कहा जी पत्थर का टुकड़ा कौन देगा, बड़ी लज्जा है, मैं किसके पास में जाऊं? इधर उधर दो चार को देख लिया तो किसी ने नहीं लिया, मूल्य नहीं लगा। तो एक साग बेचने वाली के पास में गया तो देखा कि पत्थर तो बड़ा चमकीला है, हमारा बच्चा छोटा सा इससे खेलेगा। कहा जी एक शेर साग देंगे, एक किलो साग, पालंग का साग देंगे, दे दो, और नहीं तो हम बटखरा बना, बटखरा जानते तोलने का, वो छोटा छोटा होने का, इसको मैं बना। कहा जी बेचना है, कहा जी अच्छा अच्छा एक किलो तो साग इसका दाम हुआ, मैं समझता था कि ये भी नहीं। पास में एक लोहार था उसके पास में गया, कहा जी इसको जरा देखना तो इसका क्या मूल्य हो सकता है, तो बेचना है तो हाँ बेचना। देखा इधर उधर देखकर कर बड़ा सुंदर स्थान पर, अच्छा ये अच्छा एक रुपया दूंगा दे दो। तो उसने कहा जी जरा मैं गुरु जी से पूछा, कहा जी एक रुपया दाम लग गया, गुरु जी एक रुपया में इसको छोड़ दीजिए, एक रुपया तो बहुत इसका मूल्य होता है। अच्छा ठहर जा तुम जाओ तो दूसरी जगह जाओ। तो एक सुनार के पास में, सुनार ने देखा, देखकर के सुन लिया, उस पर रगड़ा, देखा जिससे उस पर वो आ गया था, तो साधारण पत्थर नहीं है ये, तो विशेष कुछ कीमती है, भाई 100 रुपया हम दे देंगे। बड़ा प्रश्न है गुरु जी जल्दी से 100 रुपया में बेच दीजिए। कहे नहीं नहीं अभी सुन जाता देखो तुम जाओ तो दूसरे की है पार्थी जो। उसने कहा अरे ये तो हीरा का टुकड़ा है, ये 10-20 लाख रुपए में भी इसका मूल्य नहीं, ये तो करोड़ों में जाएगा, 1 करोड़ मैं दूंगा, यदि देना है तो गुरु जी को कह दे। गुरु जी के पास में बड़ा आनंदित हो रहे, गुरु जी 1 करोड़ रुपया वो दे रहे हैं। अरे बेबू अभी चुपचाप रहा, बेचना नहीं, तू राजा के पास में जाओ, उनके पास में बहुत से देश विदेश के लोग आते हैं, उनके यहाँ जाओ। तो वहां पर वो लेकर के गया जहां पर कि सब बड़े बड़े देशों के पार्थी लोग बैठे हुए थे। गोदिया जी महाराज जी हमारे गुरु जी ने ये पत्थर दिया है, इसको हम मूल्य जानना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इसका क्या मूल्य होगा, आपके बड़े बड़े पार्थी लोग आए हैं देख करके इसका मूल्य निर्धारित। उसने बड़ी बड़ी पाखी देते करके चमकित हो गया, ऐसा तो पत्थर हम लोगों को अभी देखा ही नहीं था। उसने एक लोहा लिया और उसके से स्पर्श कर दिया तो देखा जैसे वो सोना बन गया। अद्भुत। तो अब इसका कितना मूल्य? राजा ने कहा जो अपना राज्य सारा हम बेच करके बेच देते हैं, तुम राज्य ले लो और इस पत्थर को दे दो। अब वो गुरुजी के पास में जाकर के बात करें, गुरुजी आप जल्दी से ये पूरा राज्य ले लीजिए और इसको दे दीजिए। गुरुजी ने कहा जैसे, अरे बेवकूफ, तुम इसका मूल्य नहीं जानते, ये चिंतामणि है। कहे है चिंतामणि, ऐसे 50 मणियां आ जाएं, देखा 50 मणि साथ ही साथ में आ गए। चिंता करने के साथ में जो कुछ वो दे देती है, जो कुछ भी चिंता करो उसको कहते हैं चिंतामणि। पारस पत्थर से भी उसका मूल्य दी थी, ऐसा कहा जाता है कि चिंतामणि है। कुछ भी जो चिंता करो वही चिंतामणि दे देती, उसका मूल्य क्या है? मूल्य हो उस चिंतामणि से कोटि कोटि चिंतामणियां भी कृष्ण नाम के बराबर नहीं हो सकती हैं। चिंतामणि कृष्ण प्रेम नहीं देगी, भक्ति नहीं दे सकती, हमारे दुखों को नहीं हर सकती, बुढ़ापा नहीं ले सकती, लेगी नहीं कर सकती, निर्जीव वस्तु है। किंतु कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है, जो कुछ पाओ नीचे से लेकर के ऊपर तक कृष्ण प्रेम तक अपने को भी कृष्ण तो दे देंगे। कृष्ण नाम इतना मूल्यवान है, जन्म मरण से चुटकी बजाते ही पार कर देंगे। अजामिल को साधारण एक नाम अपने बेटे के लिए किया, भगवान के देखो पार कर। समस्त नामों में श्रेष्ठ कृष्ण नाम है, कृष्ण स्वयं कृष्ण है। इसलिए ऐसा महत्व जान करके जब करेंगे ना तो उस चीज की महिमा समझेंगे, उस पत्थर की महिमा साधारण लोग नहीं समझेंगे, जो समझेंगे तब तो फिर बड़ी अच्छी तरह से रखेंगे। उस तरह से नाम की महिमा इतना जान करके स्वयं कृष्ण है, और जब नाम करेंगे तब मन कहीं नहीं जाएगा, मन अपने आप उसमें निबद्ध हो जाएगा। कृष्ण का नाम चिंतामणि है, नाम चिंतामणि, चैतन्य रस विग्रह, रस के विग्रह। अभिनत्वान नाम नाम
पूर्ण शुद्ध नित्य,
पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, अभिनव पूर्ण मुक्त है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अभी हमारी बद्धावस्था के वजह से उनका स्वरूप नहीं दिख पड़ता, किंतु जब ही कोई मुक्त पुरुष इसको करे तो देखा जाए कृष्ण साक्षात राधा जी के साथ में हमारे साथ, और जो चाहो वही देते हैं। ऐसा ही भाषा नाम का इसको याद रखेंगे, निरंतर मन जाता है इधर तभी करें, कुछ दिनों के बाद देखेंगे जिसमें एकदम मन स्वाभाविक, मन कहीं नहीं है, और जितने प्रॉब्लम है जितना जो कुछ है कौन सा बनेगा।